नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल और यूक्रेन का अपने अपने युद्धों में विजयी होना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। इसराइल और यूक्रेन को अरबों अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता मुहैया कराए जाने का अमेरिकी संसद से अनुरोध करने की तैयारी कर रहे बाइडेन ने बृहस्पतिवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति के औपचारिक कार्यस्थल ओवल कार्यालय से देश के नाम संबोधन के दौरान दोनों देशों को दी जा रही अमेरिकी मदद को जायज ठहराया। बाइडेन ने साथ ही कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे जैसी नई परियोजनाओं के जरिए पश्चिम एशिया के देशों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमास और पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें एक बात समान है, वो दोनों ही पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। भारत द्वारा कैनेडाई राजनयिकों को मिली छूट हटाने की चेतावनी दिए जाने के बाद कैनेडा ने अपने देश के 41 राजनयिकों को बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में सेवा से हटा दिया। कैनेडा ने आरोप लगाए हैं कि उपनगरीय वैंकूवर में हुई एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। इसके बाद से भारत और कैनेडा के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। द एसोसिएटेड प्रेस ने पहले बताया था कि भारत ने कनाडा से अपने 62 राजनयिकों में से 41 को हटाने को कहा है। इसके बाद कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने बृहस्पतिवार को कहा कि 41 राजनयिकों को भारत में सेवा से हटा दिया गया है। जॉली ने कहा कि शेष 21 कनाडाई राजनयिक अपवाद हैं और वो भारत में ही रहेंगे। जॉली ने कहा कि राजनयिक छूट हटाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसी वजह से कनाडा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत से कनाडाई राजनयिकों की संख्या कम किए जाने की मांग की थी और कहा था कि उनकी संख्या कनाडा में सेवारत भारतीय राजनयिकों की संख्या से अधिक है। भारत के काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ने ब्रिटिश फुटवेयर एसोसिएशन के साथ साझेदारी में बृहस्पतिवार को लंदन में 2 दिवसीय इंडिया फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स शो की शुरुआत की। भारत के चमड़े के जूते और अन्य उत्पादों का वार्षिक निर्यात 4 अरब पाउंड से अधिक का है और इस शो से भारतीय उत्पादों की मांग में और वृद्धि की उम्मीद है। इस आयोजन में भारत के 40 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिनमें चमड़े के बैग, जूते और परिधान निर्माता शामिल हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट ने थल सेना को गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला कब शुरू किया जाएगा। बृहस्पतिवार को गाजा सीमा पर इजरायली इन्फेंट्री सैनिकों के साथ एक बैठक में गैलेंट ने सैनिकों से गाजा में घुसने के लिए सुसंगठित होने, तैयार रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिसने भी गाजा को दूर से देखा है वो अब अंदर से इसे देखेगा। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सीमा पर हजारों सैनिकों को तैनात किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन पिछले अनुमानों की तुलना में तेजी से परमाणु हथियार शस्त्रागार का निर्माण कर रहा है। ताइवान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि चीन निश्चित रूप से रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर ये कवायद कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि चीन संभवतः पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके एक नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल प्रणाली तैयार करने में जुटा है, जिसे यदि तैनात किया जाता है तो बीजिंग महाद्वीपीय अमेरिका, हवाई और अलास्का में लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। यह रिपोर्ट अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अपेक्षित बैठक से पहले आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को सिंगापुर के रक्षा मंत्री एन जी इंग हेन से मुलाकात की और आसियान तथा पूर्वी एशिया के देशों में भारत के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर आए जयशंकर सिंगापुर के नव निर्वाचित राष्ट्रपति थर्मन शरण मोगरत्नम और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा आगे साझेदारी के लिए अवसर तलाशेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मेरे मित्र रक्षा मंत्री एन इंग हेन से आज अच्छी मुलाकात हुई। हमारे राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उनका आभार। उनके रणनीतिक ज्ञान और आकलन का हमेशा प्रशंसक रहा हूँ। विदेश मंत्री ने आसियान और पूर्वी एशियाई देशों में भारत के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को ये घोषणा की गई। अमीनी की पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस घटना के बाद देश के रूढ़िवादी इस्लामी धर्म तंत्र के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हुए थे। मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए जाने वाले यूरोपीय संघ के शीर्ष पुरस्कार सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट को ये नाम असंतुष्ट सोवियत नेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1988 में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।